नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति की फिर सरकार बनेगी। 5 राज्यों में सरकार गठन के प्रयास शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और मिजो नेशनल फ्रंट को जीत की बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं, छोटे कारोबारियों और किसानों को जीत का श्रेय दिया। असम में पंचायत चुनाव की मतगणना आज। प्रधानमंत्री मातृ और शिशु स्वास्थ्य के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली में चौथे भागीदारी मंच का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने म्यांमा को शांति प्रक्रिया और आर्थिक सुधार के काम में भारत का समर्थन दोहराया। और हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज अर्जेंटीना का मैच इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया का सामना फ्रांस से। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन ली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनी है, जबकि मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने तेलंगाना में फिर सत्ता हासिल की। 90 सदस्यों की छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने 68 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। भाजपा ने 15, बहुजन समाज पार्टी ने 2 और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी ने 5 सीटें जीती। 200 सदस्यों की राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि भाजपा को 73 सीटें मिली हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 6 और राष्ट्रीय लोकदल ने 1 सीट जीती है। 13 सीटों पर निर्दलीय विजयी रहे, जबकि 7 सीटें अन्य के खाते में गईं। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से भाजपा को 109 सीटें जबकि कांग्रेस को 114 सीटें मिली हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 2, समाजवादी पार्टी ने 1 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 4 सीटें जीती। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 119 सदस्यों की राज्य विधानसभा में पार्टी ने 88, कांग्रेस ने 19 और AIMIM ने 7 सीटें जीती। भाजपा को 1 और तेलुगु देशम पार्टी को 2 सीटें मिली। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटें जीती हैं और उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। कांग्रेस ने 5, भाजपा ने 1 तथा निर्दलीय उम्मीदवारों ने 8 सीटें जीती। इस बीच 5 राज्यों में सरकार गठन के प्रयास शुरू हो गए हैं। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट MNF के अध्यक्ष जोरामथंगा ने सरकार बनाने का दावा किया है। राजधानी आइजोल में पार्टी मुख्यालय में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में श्री जोरामथंगा को विधायक दल का नेता चुना गया। ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता।
मिजो नेशनल फ्रंट के कार्यकर्ता और समर्थकों ने शानदार जीत का जश्न कल देर शाम तक मनाया। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों ने आइजोल में पार्टी कार्यालय और अन्य शहरों में भी खुशियां मनाई। दूसरी तरफ कांग्रेस की हार पर मुख्यमंत्री ललथन हौला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे इन परिणामों से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष की ताकत का सही आकलन नहीं कर पाए। आइजोल से आयरन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS के विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज हैदराबाद में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी।
तेलंगाना में भारी बहुमत से वापसी के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति की दूसरी पारी विधिवत शुरू होने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कल रात हैदराबाद में राज्यपाल से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने सरकार गठन के बारे में राज्यपाल के साथ विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री और मौजूदा मंत्रियों का नई मंत्रिपरिषद में शपथ लेना केवल एक औपचारिकता है, फिर भी चुनाव हार जाने वाले कुछ मंत्रियों के स्थान पर नए चेहरे शामिल किए जाने की संभावना है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपनी पराजय के कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं। हैदराबाद से लक्ष्मी के साथ समाचार कक्ष से मैं राजेश पांडे।
राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी में है। रणनीति तय करने के लिए आज सुबह पार्टी विधायक दल की बैठक होगी। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने त्याग पत्र दे दिया है। राज्यपाल कल्याण सिंह ने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर उन्हें अगली सरकार बनने तक पद पर बने रहने को कहा है। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष बीजेपी के कैलाश चंद्र मेघवाल ने भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा सुरक्षित सीट से सबसे ज्यादा 74,542 वोटों से जीत हासिल की। वहीं सबसे छोटी जीत भी भीलवाड़ा जिले में ही आसिम सीट पर रही, जहां भाजपा उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार को महज 154 मतों से हराया। जितेंद्र द्विवेदी के साथ सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
मध्य प्रदेश के ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में तीन बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पारंपरिक बुधनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उनके एक दर्जन से ज्यादा मंत्री चुनाव हार गए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि चुनाव परिणाम मध्य प्रदेश में लोगों की बदलाव की इच्छा को दर्शाते हैं, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विश्वास जताया कि पार्टी राज्य में सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। उधर पहले के अनुभव से सबक लेते हुए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से समय मांगा है। पार्टी ने कल ईमेल और फैक्स भेजकर राजभवन से समय देने की मांग की। वहीं राजभवन के सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही राज्यपाल राजनीतिक दलों से मिलेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस को बधाई दी है। श्री मोदी ने तेलंगाना में जबरदस्त जीत के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव और मिजोरम में प्रभावशाली विजय के लिए मिजो नेशनल फ्रंट को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विनम्रता के साथ जनादेश स्वीकार करती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनावों के नतीजों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं, छोटे कारोबारियों और किसानों की जीत बताया है। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और पार्टी इन राज्यों को नई दिशा देगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि विधानसभा चुनाव परिणाम भाजपा की अपेक्षा के अनुसार नहीं आए और अब नतीजों का विश्लेषण करने का समय है। विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके एंटनी को मध्य प्रदेश में पार्टी का पर्यवेक्षक और मल्लिकार्जुन खड़गे को छत्तीसगढ़ का पर्यवेक्षक बनाया गया है। असम में आज पंचायत चुनाव की मतगणना हो रही है। दो चरणों में हुए चुनाव में 82% मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, वामदल और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावों में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चौथे भागीदारी मंच का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने के लिए जानकारी और जवाबदेही बढ़ाना है। एक रिपोर्ट।
सितंबर 2005 में शुरू हुए पार्टनर्स फोरम यानी भागीदारी मंच वैश्विक स्वास्थ्य भागीदारी का माध्यम है। इसका उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और किशोरों, बच्चों, नवजात शिशुओं और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है। दो दिन के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य मंत्रालय मातृ, नवजात और शिशु स्वास्थ्य साझेदारी PMNCH के सहयोग से कर रहा है। इसमें 85 देशों के लगभग 1,500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भारत इस सम्मेलन का आयोजन दूसरी बार कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने म्यांमा को शांति प्रक्रिया, राष्ट्रीय सामंजस्य और आर्थिक सुधार के प्रयासों में भारत का समर्थन दोहराया है। कल नेपीथौ में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राष्ट्रपति कोविंद ने म्यांमार द्वारा शांति और स्थिरता तथा आर्थिक सुधारों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। आज राष्ट्रपति एक कृषि शोध संस्थान और चावल के उत्पादन से संबंधित एक बायोपार्क जाएंगे। दोनों ही परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। इसके बाद वो यांगून पहुंचेंगे, जहां उनके सम्मान में एक नागरिक समारोह आयोजित किया गया है। म्यांमार में भारतीय मूल के लोगों की आबादी लगभग 20 लाख है, जो दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। भारत को उम्मीद है कि म्यांमार के वर्तमान नेतृत्व में दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, आपदा राहत और विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में संबंध सामरिक रूप अख्तियार करेंगे। अंशुमान मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, नेपीताओ।
नेपाल में आज ऐतिहासिक शहर जनकपुर में विवाह पंचमी मनाई जा रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान राम और देवी सीता का विवाह हुआ था। इस अवसर पर भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु जनकपुर पहुंच रहे हैं।
भगवान राम और सीता माता के विवाह के महापर्व के लिए पूरे जनकपुर धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। जनकपुर पहुंचने के बाद वे सीधे प्रसिद्ध जानकी मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही वे मिथिला सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और साधुओं के साथ भोज करेंगे। दोपहर बाद योगी आदित्यनाथ 12 बीघा मैदान में होने वाले सीता स्वयंवर और विवाह समारोह में शामिल होंगे। विवाह पंचमी का पर्व भारत और नेपाल की जनता के बीच युगों पुराने घनिष्ठ सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाता है। राजकुमार, आकाशवाणी समाचार, जनकपुर, नेपाल।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी दंत चिकित्सा कॉलेजों और नर्सिंग संस्थानों के नियंत्रण के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस विश्वविद्यालय का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा। यह निर्णय कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप में आज क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। शाम 4:45 पर अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया का मैच फ्रांस से होगा। भारत कल शाम 4:45 पर नीदरलैंड से खेलेगा। शाम 7 बजे जर्मनी का सामना बेल्जियम से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद विशाल। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, भाजपा का विजय थमा, कांग्रेस को मिली संजीवनी। छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस ने छीनी सत्ता, मध्य प्रदेश में मुकाबला बराबरी पर। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, 2019 के सेमीफाइनल में भाजपा को झटका, गढ़ छीना, राज गया, मध्य में अटकी गाड़ी। कांग्रेस को फूल, भाजपा को कांटे, शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है, मोदी के सामने ज्यादा मजबूती से खड़े हो पाएंगे राहुल। एग्जिट पोल्स, आधी हकीकत आधा फसाना, शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, 5 साल में 28 राज्यों में करीब 350 एग्जिट पोल्स सीटों की सही संख्या बताने में 60% गलत साबित। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर शक्तिकांत दास की नियुक्ति को भी अखबारों ने पहले पृष्ठ पर जगह दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की सुर्खी है, दास को बहाल करनी होगी आरबीआई की साख, सरकार के साथ रिश्ते सुधारना होगी पहली चुनौती। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री का ये बयान कि देश हित में संसद सत्र को सार्थक बनाया जाए, हिंदुस्तान में है। दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने और उसके साथ सामाजिक भेदभाव पर उच्चतम न्यायालय की सख्त टिप्पणी को अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मौत के बाद भी उजागर न हो रेप पीड़िता की पहचान। शादी समारोह में मेहमान और भोजन की सीमा तय करेगी दिल्ली सरकार, अमर उजाला ने इसे बॉक्स में दिया है। पत्र लिखता है, केजरीवाल सरकार ने इस बारे में नीति बनाए जाने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी ताकि भोजन की ना हो बर्बादी। फील द जेल, 500 रूपये में तिहाड़ जेल में बिताएं रात, इस खबर को नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में दिया है। पत्र लिखता है, जेल का अनुभव दिलाने के लिए तिहाड़ प्रशासन कर रहा है तैयारी।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन ली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की तेलंगाना में फिर सरकार बनेगी। 5 राज्यों में सरकार गठन के प्रयास शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और मिजो नेशनल फ्रंट को जीत की बधाई दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं, छोटे कारोबारियों और किसानों को जीत का श्रेय दिया है। असम में पंचायत चुनाव की मतगणना आज हो रही है। प्रधानमंत्री मातृ और शिशु स्वास्थ्य के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली में 4वें भागीदारी मंच का उद्घाटन करेंगे। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने म्यांमार को शांति प्रक्रिया और आर्थिक सुधार के काम में भारत का समर्थन दोहराया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।